हम कविता बेन का स्वागत करते हैं और आज का विषय है मूड मैप्स। तो हम देखेंगे सुनेंगे कविता बहन को। थैंक यू। जब इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं और इनफैक्ट इस परिसर में आकर एक मेडिटेशन रिट्रीट में पार्टिसिपेट करते हुए जब सेल्फ बेनिफिट की कुछ बातें सुनते हैं, प्रीवियस सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की बातें सुनते थे और एक कदम आगे बढ़ते हुए ये सेशन इसका टॉपिक मूड मैप्स दिया हुआ है। सभी अपने अपने मूड से परिचित तो जरूर ही होंगे। जब हम मूड से लेकर बात करते हैं तो कौन से शब्द साथ साथ जोड़ते हैं, आज मूड कैसा है? हाँ जी, सॉरी थोड़ा लाउड। अच्छा है, अच्छा, और आज तो अच्छा ही होना चाहिए। और कैसा है? ऑफ है। अच्छा, अपने लिए कहते हैं औरों के लिए कहते हैं कि आज मूड ऑफ है? दोनों के लिए, कभी अपने लिए कभी औरों के लिए, ऐसे। अच्छा, जब मूड ऑफ हो तो क्या करते हैं? हाँ, मूड ऑफ होता है जब ये शब्द यूज करते हैं तो क्या करते हैं? गीत सुनते हैं। बहुत अच्छे, ताकि मूड ऑन हो जाए। अच्छा, और क्या करते हैं? सॉरी, झूमते हैं। अच्छा, अभी झूम रहे थे सभी। अच्छा, और क्या करते हैं? शांत होकर बैठ जाते हैं। स्वीट साइलेंस, या फिर वो वाली साइलेंस जो कोई मेरे पास आई नहीं, कोने में जाऊं, हाँ, शांत हो जाऊं। अच्छा, जब मूड ऑफ अपना नहीं किसी और का हो तो क्या उसको हम समझाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि उनका ठीक हो जाए मूड? नब्ज देखकर कभी नहीं करेंगे, कभी कभी कोशिश करेंगे, थोड़ा चलो कुछ बातें शेयर करें, कोई ऐसी बातें करें जो उनका भी मूड ऑन हो जाए। वास्तव में अपने मन की स्थिति, जो टेम्पररी स्टेट्स ऑफ माइंड होती है, जिससे हम दिन भर इंटरैक्शन में आते हुए, अलग अलग कर्म करते हुए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए, वैरायटी प्रकार के लोगों से, चाहे परिवार के सदस्य हैं, चाहे कलीग्स हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे को ट्रैवलर्स हैं, उनसे मिलते मिलते जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती जाती है, उसको हम सहज शब्दों में कह देते हैं मूड ऐसा है। व्यक्ति का भी मूड होता, स्थान का भी अपना एक मूड होता, एक एग्जिस्टिंग वाइब्रेशन होती है। जैसे आप सभी ज्ञान सरोवर में आए तो यहां आकर आपको क्या फील हुआ? बहुत शांति। देयर इज अ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इन द एम्बियंस, उसको सभी फील करते हैं। कोई उसको शांति डिस्क्राइब करेंगे, कोई उसको सुंदरता डिस्क्राइब करेंगे, कोई उसको बहुत कामिंग ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। देयर इज अ स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, तो स्थान का वो वाइब्रेशन बना। देश के हिसाब से भी देखें तो अभी पिछले वर्ष से आजादी का अमृत महोत्सव को लेते हुए अभी अभी हमने 15 अगस्त भी मनाया। देयर इज अ वाइब, देयर इज अ पेट्रियोटिज्म मूड इन द एंटायर कंट्री। तो जो उस समय का, समय अनुसार वाइब्रेशन होता, चाहे व्यक्तिगत लेवल पे, चाहे एक स्थान के लेवल पे, चाहे एज लार्ज एज अ कंट्री के लेवल पे। लॉकडाउन काल में ये तो एक ग्लोबल लेवल पे था कि सारे वर्ल्ड का एक मूड बना था, एक वाइब्रेशन बना था, जो मेरे कर्म को और मेरे इंटरैक्शंस को गवर्न करता है, जिसके आधार से कहेंगे मूड ऑफ है ना, इसीलिए मैंने ऐसे जवाब दे दिया। मूड ठीक था, मूड बढ़िया था तो थोड़े समय में बहुत ज्यादा काम कर लिया। तो उस समय की मेरी स्टेट ऑफ माइंड, कि जिस समय वो कार्य, वो रिस्पॉन्स मैंने दिया, उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आज मेरा मूड ऐसा है। लेकिन अपना मूड अपने ही नजरिए पर डिपेंड करता है। आप सभी इससे सहमत हैं? सहमत हैं? उसी सेम सिचुएशन में कोई उसमें बहुत अपने आप को होपलेस फील कर सकता, सेम सिचुएशन में कोई अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली फील कर सकता, उसकी वजह है कि उस सिचुएशन को देखने का उसका नजरिया, उसका परसेप्शन क्या है। तो आज हम भी एक यात्रा करेंगे, एक बहुत सुंदर यात्रा करेंगे। उस यात्रा के दौरान हम ये मानो कि अपने विजन को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा लेते हुए जाएंगे, और अपने नजरिए से उस यात्रा में हम देखेंगे कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। थ्रू आउट दी जर्नी हमारे लिए तीन सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो शायद कभी संगठित रूप में या कभी अपने लेवल पर हम अपने आप से पूछेंगे कि इस दृश्य को मैं किस लेंस से देख रहा हूं, किस नजरिए से देख रहा हूं, विच लेंस एम आई वेयरिंग। ये एक प्रश्न कि मैं इसको कैसे देख रहा हूं, क्या दूसरा भी उसको वैसे ही देख रहा है, वो सेकेंडरी हो जाता। तो पहला प्रश्न जो हम अपने आप से इंटरमिटेंटली इस यात्रा के दौरान पूछेंगे वो है विच लेंस एम आई वेयरिंग। दूसरा है व्हाट डिस्टेंस एम आई मेंटेनिंग, अर्थात उस दृश्य से मैं अपने आप को कहां तक डिटैच कर सकता हूं या कर सकती हूं, व्हाट डिस्टेंस एम आई मेंटेनिंग। और तीसरा है विच डायरेक्शन एम आई नेविगेटिंग, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, ये यात्रा करते हुए मेरी दिशा क्या है जो मैंने तय की है और उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मेरा नजरिया कैसा है, विच लेंस एम आई वेयरिंग, व्हाट डिस्टेंस एम आई मेंटेनिंग, मैं कितना डिटैच्ड रहता हूं या रहती हूं, एंड वेयर एम आई नेविगेटिंग, किस दिशा में मैं जा रहा हूं। तो एक सुंदर यात्रा शुरू करें। बहुत सुंदर एक यात्रा, इसमें कोई सही कोई गलत ऐसा नहीं है, लेकिन हर कोई अपने दिल में बहुत उमंग से अपने मूड को बहुत स्वस्थ बनाने के लिए हम सब मिल करके ये यात्रा शुरू करते हैं। यहां आपको एक चित्र दिख रहा है, इस इमेज को सिर्फ देखते हुए, अगर चित्र पर कोई टेक्स्ट विजिबल है तो उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन इस इमेज को देख करके आपको क्या लग रहा है, आप इसको कैसे परसीव करते हैं, ये क्या इमेज है, क्या फोटो है? ओनली इमेज, टेक्स्ट को नहीं देखना, लेकिन इमेज को देखते हुए ये क्या लगता है, किस चीज का ये पिक्चर है? सॉरी, अच्छा, ब्रह्मा कुमारी का सिंबल है, वाह व्हाट अ नाइस विजन। हाँ, और क्या बताएंगे? सॉरी, पेरिफेरी ऑफ अ सन, अच्छा सूर्य की पेरिफेरी है, जब पेरिफेरी ऑफ अ सन, लोगो ऑफ दी ब्रह्मा कुमारीज, और परम धाम है, अच्छा हाँ, परम धाम है जहां से हम आत्माएं विश्राम करती है, द अबोर्ड ऑफ गोल्डन रेड लाइट, और सॉरी आई And someone is even more closer. Angry eyes, my goodness, बच के रहना। अच्छा, किसी और को कोई और description दिख रहा है? हाँ जी, what color? Hair, अच्छा colored hair है, okay. Red color, अच्छा only red color है, किसी artist ने paint किया है red color. देखो हमको कहां से कहां तक इसमें ideas आए हैं, लोगो, स्पेस ऑफ गोल्डन रेड लाइट, फिर कोई बोलता है पेंटर है उसने रेड कलर पेंट किया है, कोई कहता है आई है, कोई कहता है सन का पेरिफेरी है, आप में से सही कौन है और गलत कौन है? अब हम किसको बोले कि कौन सही है और कौन गलत है, सब राइट है, इसको लोगो भी मैं बोलूं और इसको एक आंख भी मैं बोलूं और इसको मैं एक पेंटिंग भी बोलूं, एंड आई एम राइट, तो रॉन्ग कौन है? हाँ, राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, पर्सपेक्टिव की बात है। हाँ, ऐसे क्या कहेंगे, सही कौन गलत कौन, या किसी के कोई और आइडियाज होंगे अपने मन में रखे हैं, बोले नहीं है, और कोई सोचते हैं दूसरे लोगों को गेस करने दो, हम तो जब दीदी बताएंगे तब देख लेंगे क्या है, तब तक हमें तो अपनी बुद्धि को चलाना नहीं है, जो है ऐसा तो नहीं हर कोई सोच सकता है कि क्या है। यहां पर बात पर्सपेक्टिव्स की आती कि देयर इज वन इमेज, वन पिक्चर, हर एक का उसके प्रति एक अलग पर्सपेक्टिव है। अब जो इतना डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं, क्या हम मिलकर एक पे आ सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं? जो कह रहा है कि भाई ये तो एक पेंटिंग है, उनको हम कहें कि नहीं ये एक लोगो है, ये एक स्पेस है, क्या हम मिलकर एक पेज पे आ सकते हैं? यस और नो? आ सकते हैं। कैसे आएंगे? कैसे? अगर सामने सामने आ गए और किसी ने बोल दिया मैं राइट हूं और तुम रॉन्ग हो, और वो कहे नहीं मैं राइट हूं तुम रॉन्ग हो, उसको हम एक पेज पे कैसे लाएंगे? हाँ जी, हमारे थ्रू नहीं, सत्य के थ्रू। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट वन इमेज, लेकिन हमें देखना है कि हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, जो पहला क्वेश्चन हमने देखा, व्हाट लेंस एम आई वेयरिंग, मैं कौन से नजरिए से, कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, आई एम श्योर हम सब बहुत ही जल्द एक पेज पर आ जाएंगे। अब किसी की दो राय है, हो सकती है, कोई गलत नहीं है। अ चिकन द आई ऑफ अ चिकन, अब क्या दिख रहा है हमें? पैरट की आई दिख रही है, किसी को चिकन की आई दिख रही है, पर सबको दिख क्या रहा है? आई दिख रही है कि अभी भी कोई और दो राय है? है आंख है सबको, सबके लिए आंख है। हाँ यशवर, अर्जुन को भी जब सिखाया जा रहा था तीरंदाजी तो उसको कहा था ना, तुम क्या देखो? तुम पेड़ नहीं देखो, पत्ते नहीं देखो, बादल नहीं देखो, आसमान नहीं देखो, फल नहीं देखो, फूल नहीं देखो, ब्रांचेस नहीं देखो, पक्षी के रंग नहीं देखो, तुम क्या देखो? तो अभी हम सबको क्या दिखाई दे रहा है? हम भी राजयोग सीखने आए हैं, वी've seen an eye, पर अब किसकी आंख है? अगेन उसमें भी हमारे पास ऑलरेडी दो ओपिनियंस आ गए हैं, इसमें भी हम एकमत हो सकते हैं? अब वो परम धाम, हाँ वो लोगो, वो सूर्य, अभी सब उसकी विचारधारा कहाँ आ रही है? हम क्या देख रहे हैं? अब और क्लियर हुआ? हम एक पक्षी को देख रहे हैं और इनिशियल पार्ट में उस पक्षी की आंख को और उसके पहले उस आंख के भी एक हिस्से को देख रहे थे। जितना जितना हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हैं, लेकिन जितना जितना हम थोड़ा समय लेते हैं, ओपिनियंस के लिए कहते हैं दे चेंज विथ टाइम, जितना जितना हम हर चीज को उसके कंप्लीट पर्सपेक्टिव में समझने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उतना उतना वो चीज हमें पूरी तरह से क्लियर समझ में आती है। जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर कोई ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट हो जाती और हम सहज रूप से कह देते मेरा तो दिन ही खराब हो गया, या हम कह देते मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। क्या मैंने उस पूरे पिक्चर को समझने की कोशिश की? अगर मेरी राय से किसी और की राय थोड़ा डिफरेंट है तो क्या उसके नजरिए को समझने की मैंने कोशिश की? अपने मन की स्थिति को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसी और की या मेरी? किसी और की है, अपनी खुद की है? ट्रैवल करते हैं, अगर बच्चों को लेकर जाते हैं तो हर कोई क्या कहते हैं, अपने बच्चों को खुद संभालें, यही कहा जाता है ना। तो मेरा मन उसको संभालेगा कौन? और संभालेंगे या मैं संभालूं? सोच के बोलिए, मेरे मन की संभाल कौन करेगा? तो ऑन और ऑफ की स्विच किसके पास है? कोई आपसे पूछ ले आज मूड ऑफ है, क्यों मूड ऑफ है? क्यों मूड ऑफ हो जाता? हाँ, बॉस की वजह से, कलीग की वजह से, ड्राइवर की वजह से, स्विच किसके पास है? ऑफ ऑन की स्विच हमारे खुद के पास है। जब हम उस लार्जर पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, उस सत्यता को समझते हैं, तो जो आपस में डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को हम नैरो डाउन कर सकते हैं, डिफरेंसेस को हम कम कर सकते हैं, वी कम ऑन द सेम पेज, और एक दूसरे को समझने की हमारी भावना बनती। तो देखो कितना सुंदर कलरफुल ये पैरट है, कितनी सुंदर वो ग्रीनरी के बीच में बैठा हुआ है, और कितना अच्छी तरह से उसका फोटोग्राफर ने जो लिया है वो भी बहुत अच्छा फोटो लिया है। सो इट इज अ वेरी प्लेजेंट पिक्चर अभी तक, लेकिन हमारी यात्रा भाइयों बहनों यहां पूरी नहीं होती है। वी हैव अ लॉन्गर जर्नी टू गो। अभी हमको लग रहा कि ये बहुत सुंदर पक्षी है, हरियाली के बीच बैठा है, बहुत कलरफुल है, बहुत प्यारा है, लेकिन पंछी तो प्यारा है लेकिन पिंजड़े में कैद है। द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसको नेचर में अप्रिशिएट करने का जो मजा है, उस ब्यूटी को कई बार कई लोग कोशिश करते हैं कि हम कैप्चर कर ले, किसी की फ्रीडम की प्राइस पर अपना जो ब्यूटी का एप्रिसिएशन है उसको ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर स्वामी भाई भी जिक्र कर रहे थे, आने वाली दुनिया बहुत अच्छी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सतयुग होगा। मुझे एक बहुत अच्छी एनालॉजी जो किसी ने की थी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के कॉन्टेक्स्ट में, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा कि मानो मैं सतयुग में हूं, और सतयुग में जब बहुत सुंदर पक्षी आसमान से उड़ता है तो उस समय मेरा एक्सप्रेशन क्या है। सतयुग माना वो स्टेज जहां हमारा मूड सदैव स्वस्थ है, सदैव अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मानो मैं सतयुग में हूं, आप सब भी ट्रांसफर हो जाओ, मानो आप एक परफेक्ट वर्ल्ड में हैं, आप भी परफेक्ट है, हेल्थ परफेक्ट है, रिलेशनशिप परफेक्ट है, नेचर परफेक्ट है, दुनिया परफेक्ट है, लेट्स मूव। जब सतयुग में उन्होंने कहा कि वो पक्षी उड़ रहे हैं और मैं उन पक्षियों को देखता हूं, आई अप्रिशिएट, आई स्माइल, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, बर्ड्स आर ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, बस उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कोई और एक्सप्रेशन उस समय मेरे में नहीं होती। वो स्टेज जो मेरी है मन की, वो है मेरी गोल्डन एजेड स्टेज, कि जब अच्छी चीज को हम अच्छा समझते हैं पर उसमें हम इम्प्रेस भी नहीं होते। फिर उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मानो कि आपकी स्टेज जो है वो गोल्डन एजेड से थोड़ा सिल्वर एजेड बनती है। आप वही हैं, लेकिन स्टेट जो है वो गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बनी, त्रेता युगी बनी, अब वही सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। जब आप उन पक्षियों को देखेंगे, आपके मन में ख्याल आएगा कितना सुंदर पक्षी है। एक्सप्रेशन एप्रिसिएशन ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन और एप्रिसिएशन ऐड हो जाता। यात्रा वहां पूरी नहीं होती। थोड़ा आगे बढ़ते, मान लीजिए हम द्वापर युग तक आते हैं, अब वो पक्षियों को देखते हैं, मेरी स्टेज जो है वो थोड़ी सी परफेक्शन से कम होते होते ज्यादा कम हो गई, अब मैं उन पक्षियों को देखती हूं। द्वापर युग में क्या करेंगे जब सुंदर पक्षियों को देखेंगे? इच्छा होगी कि ये, इसको मैं कैप्चर करूं। और कलयुग में चाहे कोई भी नियत नीति अपनानी पड़े, मुझे चाहिए तो मैं उस चीज को हासिल कर लूंगा, चाहे इट इज एट द प्राइस ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड और एट द प्राइस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टेट ऑफ माइंड जैसे जैसे हमारी बदलती गई, हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर, हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर बदलता गया, और हम समझ नहीं पाए कि कैसे मेरे मन की स्थिति इन बातों से इन्फ्लुएंस होती गई। तो इतनी सुंदर कुदरत की देन है, वहां हम सोचते हैं कि इसको मैं कैप्चर कर लूं, तो वो तो हो गया कलयुग की जो तोते को पिंजरे में डाल दिया, लेकिन आगे आता है घोर कलयुग। हर चीज को कहां कैप्चर करना, कहां कैप्चर करना, कैमरा में, एज एन आर्ट तो फोटोग्राफी अच्छा है, एज अ मेमोरी फोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन आप सोचो क्या मैं उस मोमेंट को लिव कर जाऊं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वो मेमोरी मेरे में, मुझ आत्मा में इंटरनली वो पावरफुली रिकॉर्ड हो जाए, या केवल वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए वो ठीक है, लेकिन यहां तो वो रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है बिकॉज आई एम नॉट एंजॉइंग द मोमेंट, लेकिन मैं उस फोटो को या उस वीडियो को कैप्चर करने में ज्यादा टाइम दे रहा। आप में से कभी किसी ने थोड़ा कुछ फोटो, चाहे आजकल तो कई लोग कर लेते हैं अपने कैमरा में या अपने फोटोग्राफ या वीडियो हो लेने की कोशिश की होगी, और कितनों ने ऐसे रियलाइज किया कि वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन मैं तो वीडियो लेने में ही रह गया, मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। ऐसी फीलिंग आई है कभी? कोई बहुत अच्छा फूल देखा, उसका रूप, उसकी खुशबू, उसकी प्रेजेंस को फील नहीं किया, लेकिन बस फोटो में उसको कैप्चर कर लिया। बाद में आया कि फोटो तो मिल गया लेकिन उस समय को मैंने उसको फील नहीं किया। ऐसी फीलिंग आई है कभी? किसी के बच्चे डांस करते हैं, उस समय वो डांस तो कैप्चर कर लेते हैं वीडियो में, लेकिन उसकी जो लाइव परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस का जो मजा है, उस समय वो नहीं ले पाते हैं। ये हमारे जीवन की, हमारे करंट टाइम्स की एक हकीकत है कि हम इतना ज्यादा मेमोरीज को डिजिटली कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम उस मोमेंट को लिव नहीं करते हैं। एज अ मेमोरी ठीक है, आपने एक मेमोरी एज अ रिकॉर्ड ले लिया, कभी यहां समझो आए हैं, कभी जाकर बताना हम कहां आकर जाकर आए हैं, एक मेमोरी दिखा दी, लेकिन टू फील द प्रेजेंस ऑफ नेचर, टू फील द प्रेजेंस ऑफ द एनवायरमेंट, द वाइब्रेशंस ऑफ द एनवायरमेंट, एक दूसरे के साथ को फील करना, उसकी जगह हमारा ध्यान, इससे क्या होता है? इट इज नॉट बैड, लेकिन क्योंकि इंटरनली मैं वो एक्सपीरियंस नहीं लेती हूं ना, तो इंटरनली एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब इंटरनली वो वैक्यूम क्रिएट हो गया, मैं उसको फुलफिलमेंट का अनुभव नहीं कर पाई। हिल स्टेशन पर जाकर आए, चार दिन रिट्रीट करते आए, एक दिन तो ठीक रहा, नेक्स्ट डे फिर कहेंगे अरे अब तो फिर वैसे का वैसे। एक्सपीरियंसेस कैप्चर हो गए मोबाइल में, यहां वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये हकीकत है आज के दुनिया की। खुश दिखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, खुश रहना कम या ज्यादा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, खुश दिखना इंपॉर्टेंट है या खुश रहना इंपॉर्टेंट है? हमारा ध्यान किस पर होता? जब सेल्फी लेनी हो तो क्या करेंगे? बहुत प्यार से, और जैसे अपना ही कैमरा अपने सामने से हटा दिया तो चेहरा कैसा? अब बताओ, खुश रहना इंपॉर्टेंट है या खुश दिखना इंपॉर्टेंट है? सेल्फीज में लोग मजा लेते हैं, सोचो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से कितना अकेला कर दिया है। हम हर चीज, और अभी इस सेशन के कंक्लूजन में संजय भाई बता रहे थे, रीस्टार्ट करो, रीबूट करो या फॉर्मेट करो, कई बार वो जबरदस्ती ही फॉर्मेट हो जाता है, ऐसे डेटा करप्ट हो जाता है, अब कहेंगे अगर इसको चालू करना है तो इसको फॉर्मेट करना है। माना जो हमने इतना मेहनत करके फोटोज वीडियोस कलेक्ट किए डिजिटली, उसको सारा का सारा डेटा गंवाने में हमको कितना टाइम लगता? बस हाथ से वो चीज मान लीजिए गिर गई, डेटा करप्ट हो गया, और हमने तो सारे फोटोज वीडियोस कलेक्ट किए थे सारा, और अगर वही कलेक्शन हमने यहां किया होता, the experience nourishes the soul, वो मुझे भीतर से भरपूरता देता है, बाहर का खालीपन। इसीलिए टेक्नोलॉजी को यूज करना भाइयों और बहनों आज के दिन की आवश्यकता है, लेकिन कितना और कैसा यूज करना, इसमें हमें बहुत 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 ज्यादा जागृत रहने की जरूरत है। हम भी यूज करते हैं साधनों को, आज ये प्रेजेंटेशन है, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, लेकिन किस परसेंटेज में कहां तक यूज करना, इसके बारे में हमें जागृत रहने की बहुत जरूरत है। जितना हम भीतर से, चाहे आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, जितना रिच आपका कॉन्वर्जेशन होगा ना, उतना रिच आपकी फीलिंग होगी, वो आपके साथ लंबा समय रहेगी। और अगर फ्रेंड से मिले, दोनों ने मिलकर एक सेल्फी ले ली, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं किया, तो आगे चलकर के वो मुलाकात का जो एक ट्रेजर बनना चाहिए, वो ट्रेजर नहीं बनता। इसीलिए आज के तो दिन की ऐसी आयरनी है, अगर ढूंढे भी कि भी बिना कैमरा का मोबाइल फोन मिले तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो बेसिक दूसरे ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। अगर बेसिक ऑपरेशंस के सपोर्ट वाला डिवाइस लो तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कैमरा आ ही जाता। अवेलेबल होते हुए भी मुझे कितना यूज करना, मुझे अपने मन को कितना फुलफिल्ड रखना, भरपूर रखना, ये स्विच किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। आप मानेंगे नहीं, हम करीब करीब 1.5 महीने के लिए लंदन गए थे। आई एंजॉयड नेचर को, मेडिटेशन को, लाइब्रेरी में रीडिंग्स को, वहां के फैमिली को, पूरा तरीके से उस मोमेंट्स को, एक एक पल को ट्रेजर किया। जब वापस भारत आना था, उसके 2 दिन पहले मोबाइल लेकर कुछ कुछ क्लिप्स में लेने लगी, तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4-5 लोगों ने मुझसे पूछा कि 1.5 महीने से आप रहे हो, एक फोटो नहीं खींचा, आज क्या हो गया है? हमने कहा 1.5 महीना कहां टाइम स्पेंड किया ना, वापस जाएंगे तो अपने बहनों को हम बताएंगे, इसीलिए कुछ मेमोरीज कैप्चर कर रहे हैं, बाकी मुझे जो चाहिए था वो मैंने 1.5 महीने में अपने आप को फुलफिल कर दिया। लाइफ की अपॉर्चुनिटीज का हम पूरा बेनिफिट अगर ले लेते हैं तो हम कितने प्रसन्न रह सकते हैं। मूड ऑफ तो बहुत दूर की बात है। तो साधन यूज करना, लेकिन ये नहीं कि साधन मुझे डिप्लीट करे, वो मुझे सपोर्ट करे, लाइक एन असिस्टेंट, लेट इट हेल्प मी, इट कैन नॉट बिकम माय मास्टर, इट हैज ऑलवेज एंड ऑलवेज गॉट टू बी माय असिस्टेंट। तो चलो अपनी यात्रा, ये तो एक शेयरिंग हो गई। यात्रा हमारी चली थी एक छोटे से एक लोगो, एक किरण से लेकर फिर आंख पर, पक्षी पर, बर्ड पर, हरियाली के बीच, केज के बीच, लेंस के बीच। बहुत हुनर होता है लोगों को कैप्चर करने का, लेकिन थोड़ा और अगर ऊपर उठे तो जो हम देख रहे हैं, ये तो कोई अपना टाइम लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और केवल वो अपना टाइम लेकर एक कॉफी और एक न्यूज़पेपर नहीं एंजॉय कर रहे हैं, वो तो एक हॉलिडे पर है, एक हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। क्या हम अपने नजरिए को कंप्लीट पर्सपेक्टिव में रख पा रहे हैं? व्हाट डिस्टेंस एम आई मेंटेनिंग, व्हिच डायरेक्शन एम आई नेविगेटिंग। किसी के लिए इतना सुंदर हॉलिडे है, हॉलिडे पे वो अपनी साइलेंस को, अपनी सॉलिट्यूड को, अपनी कॉफी को, अपने न्यूज़पेपर अर्थात इन्फॉर्मेशन को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जो किसी के लिए एक हॉलिडे है, वो किसी के लिए जॉब है, वो अपना काम कर रहे हैं, किसी के लिए हॉलिडे प्लान कर रहे हैं। नाउ व्हाट मोमेंट इज मोर फ्रूटफुल, ये जॉब वाली मोमेंट मोर फ्रूटफुल है या वो हॉलिडे वाली मोमेंट मोर फ्रूटफुल है, मोर एनरिचिंग है? holiday, job, yeah, dono equal hai, there can be a third option also, na? क्या कहेंगे हम अपने आप को प्रसन्न तब फील करेंगे जब हम एक हॉलिडे पे हैं या हम अपने आप को इक्वली प्रसन्न तब भी रख सकते हैं जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं क्या समझते हैं क्या होना चाहिए वो नहीं बताइएगा क्या है वो बताइएगा क्योंकि हम सभी समझते हैं होना चाहिए वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए अगेन यहां पर कौन सी चीज मायने रखती है गोइंग बैक अगर मन प्रसन्न नहीं है अगर वो ये इमेज देखकर सोच रहे कि काश मैं भी ऐसा कैमरा यहां लेकर आती तो क्या उसकी स्टेट ऑफ माइंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लेजरली कंफर्टेबल हॉलिडे क्या मन से वो खुश होगी और अगर यहां अगर वो पूरी लगन से किसी और के लिए हॉलिडे प्लान कर रहे हैं लेकिन जो अपना काम कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी लगन से अपनी रुचि से आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट बिकॉज दैट इज द वे आई डू माई वर्क तो ज्यादा प्रसन्न मन की स्थिति किसकी रहेगी किसकी रहेगी सो कैन वी बी हैप्पी वेल्स वी आर एट वर्क या उसके लिए हॉलिडे कंपलसरी है क्या कहेंगे कैन वी बी हैप्पी व्हेन वी आर एट वर्क या ओनली व्हेन वी आर एट हॉलिडे सॉरी व्हाइल डूइंग द वर्क वी कैन बी मोर हैप्पी तो जब जाम अपने काम के लिए जाना होता तो मन से क्या आवाज निकलती आई वॉन्ट टू गो टू वर्क निकलता है या आई हैव टू गो टू वर्क निकलता है करना पड़ेगा या करना चाहते हैं एंड इट कैन बी एनी वर्क हाँ अगर जॉब नहीं करते घर है घर को संभालना है भोजन बनाना है तो भोजन बनाना चाहती हूं या भोजन बनाना पड़ता है ऑफिस जाना चाहता हूं या ऑफिस जाना चाहती हूं या ऑफिस जाना पड़ता है वेयर डू वी स्टैंड जाना पड़ता है अच्छा नहीं जाओ चाहते हैं हाँ जाना चाहते हैं सिर्फ पहले दिन या 10 साल हो जाए उसके बाद भी हाँ ऑल लाइफ अगेन दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड और इसीलिए कई लोग हिल स्टेशन पर जाकर भी फिर भी नाराज रहते हैं फिर भी दुखी रहते हैं फिर भी लो रहते हैं और कोई लोग लंबा समय तक कहीं बाहर गए ही नहीं है अपने काम में रहे हैं लेकिन फिर भी वो सदैव प्रसन्न रहते हैं इट इज नॉट अबाउट वेयर आई एम इट इज अबाउट व्हाट स्टेट ऑफ माइंड आई एम इन मैं अपने मन की स्थिति कैसे बनाता हूं कैसे बनाती हूं तो काम करने में तो मजा आता है और बहुत सारे लोग हैं मैं समझती हूँ यहाँ पर और जो जनरल वाइब आ रहा है एक मेजॉरिटी का वाइब आ रहा है कि मेजॉरिटी जो यहाँ बैठे हैं वो दे वांट टू वर्क वी वांट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वी वांट टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम काम करना चाहते हैं उसमें तो मजा है लेकिन प्रॉब्लम तो तब होता जब हम अकेले नहीं है काम करने में पूरी टीम है अब जितनी एफिशिएंसी से मैं करूं हो सकता है शायद उतनी एफिशिएंसी से और ना करें या हो सकता है गलती तो किसी और ने की इसीलिए काम करना पड़ रहा है मुझे ज्यादा तो तब मूड कैसा हो जाएगा क्योंकि अब केवल मैं नहीं हूं ना मेरा काम नहीं है अब तो और लोग भी हैं ऐसे लोगों को जानते हैं जो खुद तो अपना काम बहुत अच्छे से कर ले लेकिन अगर 4 लोगों के साथ करना पड़े तो जानते हैं ऐसे लोगों को अगर 4 लोगों के साथ काम करना पड़े तो सब शांत हो गए क्यों भाई अकेले खुद पूरा पहाड़ उठा लेंगे लेकिन 4 लोग साथ में हो तो एक छोटा सा हाँ टेबल भी इधर से उधर नहीं कर पाएंगे The beauty of life is in exchanging energy with other people around. केवल मशीन्स के साथ जीवन बिताने में कोई रस नहीं। मशीन तो प्रोग्रामड है, उसको जहां उसको यस करना है यस करेगा, नो करना है नो करेगा, वो फंक्शन करेगा। इंसान आपकी यस के सामने नो कहेगा, लेकिन वो एक इंसान है। जब हमें लोगों के साथ मिलकर के कार्य करना होता तो लोगों के साथ कार्य करने में हमें एक दूसरे के नजरिए को समझने का मौका मिलता। जिस डायरेक्शन को, जिस डिमेंशन को मैं मिस कर रही हूं, उस डिमेंशन को दूसरे की आंख से देखने का मौका मिलता। जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है वो दूसरों का एक्सपीरियंस है, दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का मौका मिलता। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि वो इंसान है, उनकी अपनी चॉइसेस होंगी, उनकी अपनी पसंद होंगी, उनकी अपनी एग्रीमेंट्स होंगी, उनकी अपनी डिसएग्रीमेंट्स होंगी। लेकिन मजा तो तब है जब हम औरों के साथ मिल करके, वी कैन नॉट ऑलवेज बी द सेम बट वी कैन बी ऑन द सेम पेज दो वी आर डिफरेंट। वी कैन एग्री टू डिसएग्री। आपकी राय से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिजेक्ट कर दूं और आपकी राय से मैं सहमत ना रहूं। हम एक दूसरे की राय से अलग हैं, वी डिसएग्री बट वी हैव एग्रीड दैट योर ओपिनियन इज डिफरेंट, माई ओपिनियन इज डिफरेंट। जब हम दूसरे के ओपिनियन को वो एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरों से भी हमें इन रिटर्न बाई अ नेचुरल लॉ हमें भी उनका रिस्पेक्ट प्राप्त होता है। इसीलिए जितना बड़ा संगठन होता है उतना हमारे को डेवलपमेंट की स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। तो लोगों के बीच मन की स्थिति को मजबूत रखना, प्रसन्न रखना एक्चुअली तो इजी होना चाहिए, ना कि डिफिकल्ट। लेकिन आइए अपनी जर्नी में थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं अकेली थी तो मैं बहुत अच्छे से लगन से कार्य कर रही थी, लेकिन फिर और लोग आए, देन ऑल्सो आई हैव नाउ रीच्ड अ स्टेज कि औरों के साथ भी मैं अपने मन को प्रसन्न रख करके चलूंगी। लेकिन और केवल उतने ही नहीं है जो मेरे इर्द गिर्द है, और तो सचमुच और हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है। आई एम अ पार्ट ऑफ अ लार्ज 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 सेटअप। कई बार हमारा फोकस केवल और केवल अपने पर होता है, आई मी माइन। सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी किसकी पहले जानी चाहिए? लिफ्ट में खड़े हैं, पहले किसको अंदर जाना चाहिए? अंदर से चेक करो, बोले आप बोलो नहीं। दूसरे शब्दों में तो उसको स्वार्थ कहा जाता, लेकिन आज शायद हम उसको रियलाइज ही नहीं करते। हमको लगता कि नहीं, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। सेल्फ सेंट्रिक इतना बन गए हैं कि औरों की भी कोई जरूरतें हो सकती है, अपने स्पेस बबल को प्रोटेक्ट करने में इतना बिजी हो गए हैं कि वो स्पेस दूसरे के स्पेस बबल को इंट्रूड कर रहा है, ये हम सोच ही नहीं सकते। इट इज अ वाइड लार्ज वर्ल्ड, उसमें इतनी वैरायटी है। जिस वैरायटी को मुझे अप्रिशिएट करना है, मुझे समझना है, आई एम अ पार्ट ऑफ द होल, आई एम नॉट द होल। और तो भी हमें लगता कि बस जितना मेरी ऑफिस, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग, वो केवल एक बिल्डिंग नहीं होती। जैसे हम अपना कार्य कर रहे हैं ऐसे थाउजेंड्स लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल अपना काम रोज कर रहे हैं। अगर मेरे लाइफ में कोई डिफिकल्टीज है, मेरे वर्क स्पेस में कोई डिफिकल्टीज है, क्या बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है? मेरा जॉब डिमांडिंग है, मेरा जॉब चैलेंजिंग है, मेरे लाइफ में ऐसे हैं, दूसरों की लाइफ में नहीं है। क्या क्या उसका मतलब हम नाराजगी से जीवन जी सकते हैं? क्या उसका मतलब ये कि हम बिल्कुल ऐसे थके थके से, निराश निराश से अपना काम करते रहें, चल सकता है? हमारे जीवन का उमंग, हमारे जीवन का उत्साह, हमारे जीवन की जो एनर्जी है वो मेरे हाथ में है. इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द सिचुएशन, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द बॉस, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द कंपनी फॉर विच आई एम वर्किंग और द डिपार्टमेंट फॉर विच आई एम वर्किंग, नॉट गवर्न्ड बाय द पीपल विथ हुम आई एम लिविंग. मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरे हाथ में है, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल. और फिर भी ये भी हमें लगता ना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है. चलिए थोड़ा और ऊपर उठते हैं. एक दिन वो पूरा एक्सपांस केवल एक डिस्प्ले बन जाएगा, या कहीं जो पूरा विस्तार है वो दूसरी जगह केवल एक डिस्प्ले है. और वैसा केवल एक नहीं है, इट इज एन एंटायर एक्सपांस, समझ लीजिए पूरा शहर है. अपने माइंड को हम अपने से, मेरे से थोड़ा बाहर लेकर जाएंगे तो वैल्यू होगी कि मेरे जीवन की खुशी वो क्या चीज है. और केवल इतना ही नहीं, आजकल तो कौन सा व्यू पसंद करते हैं, तो कहते हैं सैटेलाइट व्यू. और ऊपर अपने नजरिए को लेकर जाओ. व्हाट डिस्टेंस एम आई मेंटेनिंग, व्हाट लेंस एम आई वेयरिंग. सारे विस्तार में मेरा घर, मेरी ऑफिस और उसमें भी मैं, और हम उस मैं से थोड़ा भी डिटैच नहीं होते, जो उस मैं को अपने आप को भारी करने दे देते हैं. लेकिन पता है, लाइफ बहुत वंडरफुल होती है. ये सीन हमें लगता है इतना बड़ा शहर है, ये है वो है, साइंस बहुत पावरफुल है, ये पूरे शहर का व्यू एक नजर में हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाता है. विच डायरेक्शन एम आई गोइंग. आजकल नेविगेशन के लिए सभी, कहीं पहुंचना हो तो उनसे क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे, आप हमें क्या भेजो, क्या भेजो, क्या शेयर करो, लोकेशन शेयर करो. कोई एक्सप्लेन करेगा ना, वहां से लेफ्ट लेके फिर राइट ले लेना. कहेंगे नहीं नहीं वो सब नहीं भेजो, नहीं वो सब नहीं बोलो, क्या करो, लोकेशन भेज दो. नेविगेशन में तो जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, और जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज करते हुए यात्रा भी बहुत अच्छी कर लेते हैं. चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे माउंटेनियस टेरेन हो, चाहे कहां भी हो, हम यात्रा कर लेंगे. लेकिन जीवन रूपी यात्रा, जीवन रूपी यात्रा में हम किस दिशा में जा रहे हैं? वेयर एम आई गोइंग. जीवन में जो जीपीएस हमें यूज करना है जीवन रूपी यात्रा के लिए, क्या वो जीपीएस हम यूज कर रहे हैं? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति जो जीवन रूपी यात्रा में मुझे कदम कदम पर गाइड करती है, मुझे किस दिशा में जाना है आगे, मुझे कहां अपने आप को मोड़ना है, कहां मुझे रुकना है, कहां मुझे पावर ब्रेक लगानी है, कहां मुझे एक्सेलरेट करना है, क्या परमात्मा के इस ज्ञान को, उनके प्यार के अनुभव को मैं अपने लाइफ में फील करता हूं, अपने जीवन यात्रा में उसे यूज करता हूं? किसी के लिए कोई कहे कि बहुत गॉड लविंग पर्सन है, तो गॉड लविंग पर्सन किस प्रकार से, किस हिसाब से कहेंगे? हाँ हाँ, वो ना बहुत ऐसे समथिंग विच इज विजिबल, चाहे जाप करना, चाहे मंदिर में जाना, चाहे वॉट एवर, जो अपने जगह पर ठीक भी है. लेकिन कहीं ना कहीं गॉड लविंग को हम वहां तक सीमित कर देते हैं कि भाई समथिंग विच इज विजिबल. आज अपने दिल पर हाथ रखकर अगर हम अपने आप से पूछे भगवान के प्यार का, अपने जीवन में क्या मुझे अनुभव है? क्या भगवान का प्यार क्या होता मैंने एक्सपीरियंस किया है? वो भगवान जिनके लिए कहा जाता वो प्यार का सागर है, उसके प्यार का मुझे अनुभव? अगर नहीं तो क्यों नहीं, ही इज माई फादर, ही इज माई मदर। अपनी माँ का प्यार, अपने पिता का प्यार क्यों मुझे ना मिले? उसका कारण केवल इतना है कि परमात्मा के प्यार को अनुभव करने के लिए मुझे उसकी ओर देखना है। जैसे सूरज की किरणें आती हैं, दे आर एग्जिस्टिंग, लेकिन अगर मैंने खिड़की बंद कर दी, मैंने डार्क कर्टन्स लगा दिए, मैंने वो ब्लॉक कर दिया, तो मैं सूरज की लाइट से बेनिफिट नहीं ले पाती। वैसे ही भगवान के प्यार का अनुभव करने के लिए आई हैव टू लुक टुवर्ड्स गॉड, और अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना है। तो पसंद है जीवन रूपी यात्रा में कौन सा GPS यूज करेंगे? जीवन रूपी यात्रा में एक से दूसरे सफर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए तो भले आप GPS गूगल वाला यूज कर लो, लेकिन जीवन रूपी यात्रा में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति। When I am weak, God's light empowers me. उसका मुझे अनुभव करना है। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ पूरी नहीं होती है। हमें जो लग रहा है कि ये दृश्य कोई नेविगेशन देख रहा है और अपनी नेविगेशन पे अपनी यात्रा को एक माउंटेनियस टेरेन पर लेकर जा रहा है, वास्तव में वो तो कोई अपनी इस यात्रा की मेमोरी रिलिव कर रहा है। वो देख रहा है कि एक समय पर मैंने ऐसे यात्रा की थी, और वो व्यक्ति केवल अकेला नहीं देख रहा, एक्चुअली वो अपने परिवार के साथ देख रहा। जो उसकी जर्नी है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको एंजॉय कर रहा। लेकिन क्या ये भी सत्य है? इट इज ओनली अ फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम ऑफ अ कैप्टन, जो फैमिली के साथ शायद टाइम कम मिलता तो क्रू के साथ टाइम काफी बिताता है। और जितना जितना अपनी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचा उठते हैं, जो पूरा शहर हमको दिखाई देता वो सारा शहर बहुत छोटे छोटे लकीर मात्र रह जाते हैं। और जितना और हम ऊपर उठते हैं, जिस माउंटेनियस टेरेन को क्लाइम करने के लिए हमें GPS की जरूरत थी, अब बर्ड्स आई व्यू में वो पूरा हमको खुद ही दिखाई दे रहा है। और उससे भी जब हम ऊपर उठते हैं तो सारा विश्व, सारा यूनिवर्स हमें बहुत एक नजर में दिखाई देता। व्हाट डिस्टेंस एम आई मेंटेनिंग? यूनिवर्स शब्द सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इस यूनिवर्स, विश्व, यूनिवर्स कहते हैं ना, अगर उस वर्ड को हम दो में स्प्लिट करें तो यूनि प्लस वर्स मिलके बना यूनिवर्स। यूनि का मीनिंग होता है वन, एंड वर्स का मीनिंग होता अ गीत, द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग। यूनिवर्स अर्थात जो एक गीत है, सारे विश्व का जो एक वाइब्रेशन है। मेरी चॉइस केवल इतनी ही है कि वेदर आई एड टू द म्यूजिक और वेदर आई एड टू द नॉइज। क्या पसंद करेंगे? I want to be a part of the melody or I want to be a part of the malady? क्या contribute करना चाहेंगे, music या noise? कोई है जो चाहे? मैं तो आवाज करूंगा, सब लोग प्यार से बजाएंगे, मैं पीछे से? ऐसा तो नहीं, naughty children होते ना, कोई सोचते सब गाएंगे ना तो मैं ताल बिगाड़ूंगा। लेकिन जब हम इस बेहद के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, इट इज अ वाइड वर्ल्ड, हमारे हाथ में केवल और केवल उतना ही है कि जिस पॉइंट पर मैं हूँ, आई एम जस्ट अ पॉइंट इन द एंटायर एग्जिस्टेंस, जिस पॉइंट पर मैं हूँ उस पॉइंट का मुझे पूरा 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 जस्टिफिकेशन देना है, अपने रोल को उसका पूरा आनंद लेना है। आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट म्यूजिक टू द यूनिवर्स, क्योंकि इससे भी हम जब ऊपर जाते हैं तो सारी पृथ्वी भी कितना दिखाई देती है, केवल एक बॉल के रूप में। सोलार सिस्टम का जो सूर्य है वो सूर्य भी हमें कितना दिखाई देता, जैसे जैसे हम अपना नजरिया ऊंचा उठाते हैं, इट इज ओनली अ पॉइंट। अब बताओ अपने जीवन में हम अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस दे देते हैं, मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन जब हम अपनी विजन को, अपने दृष्टिकोण को बेहद का बनाते हैं तो हमें पता चलता कि ईच सीन हैज अ कॉन्टेक्स्ट, और ये जीवन की हकीकत है भाइयों और बहनों, ईच सीन हैज अ कॉन्टेक्स्ट। हम क्योंकि एक ही पिक्चर देख रहे हैं ना, तो हमें उस समय रियलाइज नहीं होता, लेकिन जैसे उस एक पिक्चर से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता इसकी वास्तविकता क्या, और आगे जाते हैं और पता चलता इसकी वास्तविकता क्या है। और अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है भी तो भी उसमें हमें चूज करना है कि वेदर आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। डू आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट म्यूजिक और डू आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट नॉइज। और जब हम सही चॉइसेस अपने जीवन में करेंगे तो देन वी विल बिकम द एंजल्स, हम अपने जीवन में जैसे कि फरिश्ते के जैसे बन जाएंगे, कि हमारे सभी से जो रिश्ते हैं वो बहुत ही स्मूथ है। आज अपने मन को नहीं संभाल पाने के कारण सारे रिश्तों में क्या हो गया है, सारे रिश्तों में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए हैं, कहीं पर ईगो है, कहीं पर कंट्रोल करने की भावना है, कहीं पर गुस्सा है, कहीं कंपटीशन है, कहीं पर जेलसी है, कहीं पर स्वार्थ है, कहीं पर लैक ऑफ ट्रस्ट है, शक है। क्या उसका कारण सामने वाला है, क्या उसका कारण सामने वाला है? मेरा वाइब्रेशन अगर गुस्से का बन जाता, कंप्लेंट का बन जाता, मेरा वाइब्रेशन अगर वीक हो जाता तो उसका कारण कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? पावर ऑन या ऑफ स्विच किसके हाथ में है? उस आई को हम उस समय भूल जाते हैं और दूसरी बातों को बड़ा करके अपने मन की शक्ति को हम कमजोर कर देते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने जो यात्रा की, हमारे पर्सपेक्टिव्स बदलते गए या नहीं बदलते गए? बदलते गए। पहले हमारे ओपिनियंस अलग थे, फिर हमारे ओपिनियंस एक हुए, फिर हमारी यात्रा में उसके अलग अलग एसोसिएशंस बनते गए। तो जो हमने इस यात्रा में अनुभव किया उसको हमें हमारी जीवन रूपी यात्रा में भी अनुभव करना है। हमें अपने आप को भीतर से फुलफिल्ड रखना है, और मन को फुलफिल्ड रखने के लिए बहुत अच्छा साधन है भगवान को याद करना। इसलिए कोई कहे ना मूड ऑफ हो जाए तो क्या करो, तो भले म्यूजिक सुनो, ये सब करो, उस समय पर थोड़ा सा भगवान को याद करके भी देखो कि इस समय पर उसको मैं याद करूं तो वो मेरे मन को कैसे ठीक करता है। इस समय उसको मैं याद करूं तो वो मुझे क्या कहता है, कभी सुनने की कोशिश तो करो। और अपने जीवन के हर पल को, हर मोमेंट को उस मोमेंट की एंजॉयमेंट में जियो, ना कि डिजिटल डिवाइसेस के कैप्चर करने के शौक में। जितना हम अपने आप को भीतर से फुलफिल्ड रखेंगे, ये जो ज्ञान की बातें हम सुन रहे हैं, जैसे आप आज सुन रहे हैं, वैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हम रोज सुबह थोड़ा समय परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए टाइम निकालते हैं। रोज सुबह पर वो ज्ञान के बीज मेरे मन रूपी भूमि में जब बोए जाते हैं, सिचुएशंस तो किसके सामने नहीं आती भाइयों और बहनों, लेकिन जब वो सिचुएशन सामने आती है, उस समय पर ये ज्ञान के बीज वो मुझे मदद करते हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने में। तो इसीलिए अपने मन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ले लेते हैं, तो उस समय हमारा मूड हर समय प्रसन्न रहता है। हमें कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, हमें कोई ये नहीं, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर माइंड। उसका मतलब ये नहीं कि कभी हॉलिडे पे जाना नहीं, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब हम घर पर हैं, ऑफिस में हैं, तो भी हम प्रसन्न हैं। जब हम घर से बाहर एक चेंज लेते हैं तो वहां भी हम प्रसन्न हैं। वी लिव एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट बिकॉज वी आर नर्चरिंग आवर सेल्फ ट्रूली। तो आज से मूड की स्विच कैसी रखेंगे, कैसी रखेंगे? कोई और आए और दबाने की कोशिश करे तो मेरा जो एनर्जी सर्कल है, मेरे मन की जो शक्ति है, वो इतनी पावरफुल है कि कोई और आकर के इंट्रूड कर ही नहीं सकता, वो ऑफ कर ही नहीं सकता। बस मुझे अपने डिस्टेंस को, मुझे अपने डायरेक्शन को, मुझे अपनी लेंसेस को हमेशा क्लीन रखना है। तो ये मन की शक्ति को टैप करने का तरीका, वो है मेडिटेशन। तो थोड़ा समय अभी हम मेडिटेशन करें, फ्यू मिनट्स करें। जो जर्नी हमने बाहर साधनों के द्वारा की, वो जर्नी मन की शक्ति से करेंगे। और अपने मन को टैप करते हुए, मन को परमात्मा से कनेक्ट करते हुए, हम अपने जीवन को हमेशा प्रसन्न बनाएंगे। आइए भीतर चलते हैं। अपने आप से बात करते हैं। मेरा जीवन भगवान की बहुत सुंदर गिफ्ट है। और मेरे लिए एक्सक्लूसिव गिफ्ट है। भगवान द्वारा मिली हुई इस गिफ्ट को मैं बहुत 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 वैल्यू करती हूं। आई वैल्यू माय लाइफ। मैं अपने जीवन में हर पल, हर सेकंड प्रसन्न, प्रफुल्लित, काम, स्टेबल और स्थिर रह सकती हूं। मुझ में वो ताकत है। तूफान आए, आंधी आए, समस्या आए, परीक्षा आए, वो मुझ में कोई ना कोई निखार लेकर आती है। मेरा नजरिया सीखने का है. द लेंस दैट आई वेयर इज द लेंस ऑफ गैदरिंग पॉजिटिविटी. अगर किसी से गलती हो भी जाए, आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोल्यूशन. मैं उस समाधान में अपना योगदान देती हूं और इसीलिए मेरा मन सदा प्रसन्न है. किसी की गलती मेरी गलती मिलकर पार कर लेंगे. अपने प्रसन्न मन से उसके मन को भी संभाल लेंगे. गलती अलग है, जिससे गलती हुई वो आत्मा अलग है. मैं उन दोनों के अंतर को समझती हूँ. What distance am I maintaining? उस डिस्टेंस को मैं समझती हूँ. और साथ साथ किस दिशा में जा रही हूँ? मैं उस दिशा में जा रही जहां परमात्मा का ज्ञान मुझे संकेत दे रहा, अर्थात जीवन के हर प्रसंग पर क्या निर्णय लूं, उस निर्णय का आधार भगवान का दिया हुआ ज्ञान है. ज्ञान सिखाता स्थिर रहो तो मैं स्थिर हूं, ज्ञान सिखाता शांत रहो मैं शांत हूं, ज्ञान सिखाता राइट कर्म करो मैं राइट कर्म करती हूं. इससे मैं अपने आप को भगवान के समीप अनुभव करती हूँ. और जब भगवान जैसा परम मित्र मेरी जीवन यात्रा का कंपेनियन हो जाए, फिर तो उस यात्रा का आनंद ही अनोखा है. भगवान मेरी जीवन यात्रा के साथी हैं, मेरे मित्र हैं, और उन्हीं की दिशा में, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे मैं आगे बढ़ रही हूँ. इन संकल्पों से मेरा मन स्वस्थ सशक्त रिफ्रेश्ड और रिचार्ज्ड है. ओम.